بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں. شروتاؤں, آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 102 سے 104 تک کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری محمد صدیق منشاوی نے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا
صدق اللہ العظیم.
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे ईमान वालों, ईश्वर से वैसे डरो जैसे उससे डरना चाहिए और मुस्लिम रहते हुए ही मरना, और तुम सब मिलकर ईश्वर की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और बिखरो नहीं, और अपने ऊपर ईश्वर की उस विभूति को याद करो जब तुम एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम जगाया, तो तुम उसकी विभूति की छाया में एक दूसरे के भाई बन गए, जैसा कि तुम नरक की कगार पर थे और ईश्वर ने तुम्हें उससे मुक्ति दिलाई। ईश्वर अपनी निशानियों को इस प्रकार तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि शायद तुम लोग मार्गदर्शित हो जाओ, और तुम मुसलमानों के बीच एक ऐसा गुट होना चाहिए जो लोगों को भलाई का निमंत्रण दे, अच्छे कार्यों की ओर आमंत्रित करे और बुराइयों से रोके, और ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, आज मंगलवार है, फरवरी की 23 और अप्रैल की 12 तारीख है, साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के पवित्र महीने रमजानुल मुबारक की 10 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे, उसके बाद आपकी सेवा में कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा पेश किया जाएगा, और उसके बाद आप पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी हज़रत खदीजा की वफ़ात के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम सुनेंगे, और अंत में आपकी सेवा में पवित्र महीने रमजानुल मुबारक के अवसर पर पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी प्रसारित किया जाएगा। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी से सुनेंगे। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। अफगानिस्तान में ईरानी दूतावास और कौंसुलेट पर शरारती तत्वों ने फेंके पत्थर। फिलिस्तीनी जियालों की शहादत प्रेमी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मोदी और बाइडेन के बीच हुई वर्चुअल बैठक। जर्मनी में महंगाई ने तोड़ा 41 वर्षों का रिकॉर्ड। दोस्तों, अब समाचार आप विस्तार से सुनेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान और अफगानिस्तान के संबंधों को खराब करने वालों को चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खतीब जादे ने दोनों देशों के गहन ऐतिहासिक संबंधों की ओर संकेत किया और दोनों देशों के संबंधों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को चेतावनी दी है। ईरान और अफगानिस्तान के संबंधों के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कुछ लोगों ने सोमवार को काबुल में ईरानी दूतावास और हेरात में ईरानी कौंसुलेट के सामने इकट्ठा होकर पत्थर फेंका। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान में डिप्लोमेटिक केंद्रों की सुरक्षा हेतु काबुल सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारियों से और संकेत किया और बल देकर कहा कि ईरानी दूतावास और कौंसुलेट की पूरी तरह सुरक्षा की जानी चाहिए। ईरान और अफगानिस्तान के मामलों में इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि ने कहा है कि दुश्मन ईरान और अफगानिस्तान के बीच नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहा है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह मंगलवार को पवित्र नगर मशहद में इमाम रजा अलैहि सलाम के पवित्र रोजे के पैगंबर आजम नामक प्रांगण में एक हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया था कि जिससे दो धार्मिक छात्र शहीद और एक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमलावर को इमाम रजा के रोजे के सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पवित्र नगर मशहद में होने वाली घटना पर जहां पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वहीं अफगानिस्तान की जनता, हस्तियां, धार्मिक संगठन और अफगान अधिकारी लगातार इस घटना की निंदा कर रहे हैं और ईरान की जनता और सरकार से संवेदना जता रहे हैं। इस बीच अफगान शरणार्थियों के संबंध में कुछ अज्ञात लोगों के जरिए सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों को प्रकाशित किया जा रहा है कि जिसका सच से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे झूठे प्रचार का केवल एक ही उद्देश्य है और वो अफगानिस्तान और ईरान के बीच नफरत का बीज बोना। इसी साजिश के तहत सोमवार को काबुल में ईरान और अफगानिस्तान के संबंधों के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले कुछ लोगों ने ईरानी दूतावास और हेरात में ईरानी कौंसलेट के सामने इकट्ठा होकर पत्थर फेंका। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अफगानिस्तान के मामलों में इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि हसन काजमी कुम्मी ने अपने ट्विटर पेज पर ईरान में मौजूद अफगान शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए लिखा कि दुश्मन दो पड़ोसी राष्ट्रों अफगानिस्तान और ईरान के बीच नफरत का बीज बोने का प्रयास कर रहा है। काजमी कुम्मी ने कहा कि अफगान शरणार्थियों के लिए स्थिति अनुकूल है और जल्द ही और अच्छी चीजें सामने आएंगी। अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के एक बार फिर शहादत प्रेमी कार्रवाइयों का साक्षी बना। ताजा कार्रवाइयों में एक फिलिस्तीनी जाले ने वेस्ट बैंक के अस्कलान शहर में आतंकी इसराइली सुरक्षाकर्मी को अपना निशाना बनाया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के आतंकी सुरक्षाकर्मी अवैध अनुशासन की आतंकवादी नीतियों के विस्तार के लिए हर दिन फिलिस्तीनियों को अपने अत्याचारों का निशाना बनाते हुए उन्हें शहीद, घायल या फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। वहीं फिलिस्तीनियों ने भी इसराइली आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रतिरोध का रास्ते को चुना है और उसे जारी रखने की ठान ली है। प्रतिरोध के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए फिलिस्तीनी जियाले शहादत प्रेमी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, जिसकी चिंगारी इस समय अवैध अधिकृत वेस्ट बैंक में लग चुकी है। न्यूज एजेंसी वफा के अनुसार मंगलवार को अस्कलान शहर में एक फिलिस्तीनी जियाले ने आतंकी इसराइली सुरक्षाकर्मी को अपना निशाना बनाया और उस पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें इसराइली सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी बैठक में कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंसी के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि दोनों देशों के बीच स्थिति बेहद चिंताजनक है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को वर्चुअल शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध पर बातचीत की, जिसके बाद अमरीका ने कहा कि इस संकट पर भारत अपना निर्णय खुद करेगा, लेकिन यह भी कहा कि यदि नई दिल्ली ने चीन और रूस के बीच कड़े संबंध देखे तो ये स्पष्ट रूप से उनकी सोच को प्रभावित करेगा। वहीं इस बैठक में मोदी ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत का सुझाव दिया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के बूचा में नरसंहार की निंदा की। मोदी ने कहा कि बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्या की खबर बेहद चिंताजनक थी। हमने तुरंत इसकी निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की। हमने यूक्रेन में नागरिक आबादी की सुरक्षा और उन्हें मानवीय सहायता की आपूर्ति पर जोर दिया। जब मैं पिछले साल सितंबर में वाशिंगटन गया था तो बाइडेन ने कहा था कि भारत अमेरिका की साझेदारी कई वैश्विक समस्याओं का समाधान में योगदान दे सकती है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदते हैं उतना यूरोप एक दिन में खरीदता है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश अन्य देशों से रूस का तेल न खरीदने के लिए कह रहे हैं। रूस से तेल की खरीद पर चल रही बहस के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अमरीका में महत्वपूर्ण 2+2 संवाद में कहा कि भारत की रूसी ऊर्जा की मासिक खरीद यूरोप के एक दिन के मुकाबले कम है। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले के बीच अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश अन्य देशों से रूस का तेल नहीं खरीदने के लिए कह रहे हैं। यूक्रेन युद्ध 48वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल रात को 23वें प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ने नए प्रधानमंत्री से पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने नई सरकार के कार्यक्रमों को बयान किया और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर बल देते हुए कहा कि हम मित्र व दोस्त देश ईरान के साथ विशेषकर आर्थिक क्षेत्रों में संबंध विस्तार का समर्थन करते हैं। समाचार एजेंसी इन्ना की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में भाषण देते हुए देश की विदेश नीति के भी मजबूत किए जाने पर बल दिया। उन्होंने इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण और दोस्ताना बताया और बल देकर कहा कि हम ईरान के साथ द्विपक्षीय और व्यापारिक संबंधों में विस्तार का समर्थन करते हैं। जर्मनी में 3 दशक से भी लंबे समय के बाद खाद्य पदार्थ जैसी बुनियादी चीजों और ईंधन के दामों में तेज उछाल देखा जा रहा है। इससे न सिर्फ आम लोगों का यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है, बल्कि बचत पर जोर देने वाले लोग भी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में महंगाई दर में 7% की हुई वृद्धि ने इस देश में हाहाकार मचा दिया है। रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ आरंभ किए गए विशेष सैन्य अभियान के बाद से अमरीका समेत यूरोपीय देशों ने मास्को पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की कार्रवाई ऐसे समय में की गई है कि जब यूरोपीय देशों को इस बात का डर है कि आर्थिक क्षेत्रों, विशेष रूप से तेल और गैस के क्षेत्र पर रूसी प्रतिबंधों के बढ़ने से पश्चिमी देशों की आर्थिक स्थिति और वैश्विक ऊर्जा बाजार और अधिक अस्थिर हो जाएंगे। इस बीच ब्यूरो ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में पिछले महीने मुद्रास्फीति की दर 7.3% बताई है। इससे पहले सबसे अधिक मुद्रा स्फीति दर में वृद्धि वर्ष 1981 में फारस की खाड़ी युद्ध और तेल की बढ़ती कीमतों के कारण दो जर्मनी के एकीकरण से पहले दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय है कि इस समय केवल जर्मनी नहीं पूरे यूरोप में बिजली, खाने और किराए जैसी चीजों के दाम अंधाधुन बढ़ रहे हैं। यूरोप में महंगाई हर साल 5-5% दर से बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पर अब रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को आगाह किया कि रूस यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने पश्चिमी देशों से संभावित हमले को रोकने के लिए और कड़े प्रतिबंधों को लगाने का आह्वान किया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा खींचता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर के लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही है। इसका कारण युद्ध अगर ज्यादा लंबा खींचता है और अन्य देश में भी इस युद्ध में कूदते हैं तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त होते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह के महत्वपूर्ण भाषण की। राजनीतिक चर्चा में हम एक नजर डालेंगे पाकिस्तान में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर आने वाली प्रतिक्रियाओं पर। भारत के कुछ राज्यों में चुनाव और उपचुनाव हुए हैं, ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह के भाषण से।
मेरे
हिजबुल्लाह लिबनान के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने महत्वपूर्ण भाषण में कई विषयों को उठाया जिसमें फिलिस्तीन के हालात और लिबनान की आंतरिक स्थिति प्रमुख रूप से शामिल थे। जायजा पेश कर रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है उसका अतिग्रहणकारियों से लड़ाई में और जानवी शासन के भविष्य के लिए बड़ा संदेश है। लिबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह ने जानवियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ये शर्तबंदी कर रहे हो कि फिलिस्तीनी नाउम्मीद हो चुके हैं तो भूल कर रहे हो। उन्होंने लिबनान में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कहा कि हमें इस बात का हक है कि हम अमेरिकी दूतावास पर आरोप लगाएं कि वो लिबनान में होने वाले चुनावों को अविलंबित करने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने लिबनानी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के बारे में जो कुछ लिखा जाता है उस पर विश्वास न करें, बल्कि उस चीज पर विश्वास करें जो हिजबुल्लाह अंजाम देता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के अमल का आधार सच्चाई है। हम चुनाव में सबकी, यहाँ तक कि अपने विरोधियों व दुश्मनों की भी भागीदारी चाहते हैं, जबकि अतीत में चुनावी कानून में दूसरे पक्षों को जानबूझकर हटा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय एकजुटता की सरकार चाहते हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि कुछ लोग ये बताने की चेष्टा में हैं कि प्रतिरोध के हथियार संकट के कारण हैं, परंतु वे 30 साल से जारी आर्थिक भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नीतियों के बारे में बात नहीं करते। जो पार्टियां 30 साल से अधिक सत्ता में थी वे ऐलान करें कि उन्होंने लोगों के साथ क्या किया। जो लोग प्रतिरोध के हथियार की बात करते हैं उनका लक्ष्य अमेरिका पश्चिम और कुछ अरब सरकारों को खुश करना है ताकि वे उनका आर्थिक समर्थन करें। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध शक्ति में संतुलन उत्पन्न करके दुश्मनों के मुकाबले में देश की रक्षा कर रहा है। इसी प्रकार सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम यमन में युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और हम आरंभ से युद्ध और लोगों के रक्तपात का बंद किए जाने के इच्छुक थे और कोई भी सऊदी अरब को लक्ष्य नहीं बनाना चाहता। जानकार हलकों का मानना है कि दुश्मनों की एक चाल यह है कि जो चीज भी उनके विस्तारवादी नीतियों के मार्ग की बाधा है उसके खिलाफ जितना हो सके दुष्प्रचार किया जाए और आम जनमत का ध्यान संकट के वास्तविक कारणों से भटका जाए। लिबनान और क्षेत्र के कुछ संचार माध्यम ये बताने का प्रयास करते हैं कि इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह बहुत से संकटों का जिम्मेदार है, इसलिए वे हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की बात करते हैं, जबकि ये अमेरिका और इसराइल की हार्दिक इच्छा है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जानवी सैनिक दक्षिणी लेबनान से भागे हैं तो उसकी असल वजह हिजबुल्लाह का साहसिक प्रतिरोध है, और अगर हिजबुल्लाह के हथियार और उसके प्रतिरोध न होते तो कोई भी ताकत न तो इसराइल को दक्षिणी लेबनान से निकाल सकती थी और न ही कोई ताकत जानवी शासन के विस्तारवादी कार्यवाहियों व नीतियों के मार्ग की रुकावट बन सकती थी।
पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार इमरान खान की सरकार चली गई और शहबाज शरीफ इस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व स्तर पर इस संदर्भ में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने में आई हैं। जायजा पेश कर रहे हैं सैयद मीसम।
पाकिस्तान की कमान शहबाज शरीफ को मिल गई है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख हैं। पाकिस्तान में हुए इस सत्ता परिवर्तन की चर्चा दुनिया भर के मीडिया में काफी हो रही है। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला भाषण दिया उसमें सऊदी अरब, तुर्की, चीन और यूएई का नाम लिया। उन्होंने भारत का भी नाम लिया लेकिन कहा कि बिना कश्मीर मुद्दे के समाधान के रिश्ते पटरी पर नहीं आएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीफ को सबसे पहले बधाई देने वालों में शामिल हैं और उन्होंने उन्हें हिज एक्सीलेंसी कहकर संबोधित किया है। चीन के अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है चीन और पाकिस्तान के विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन से दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शरीफ परिवार की लंबे समय से पाकिस्तान और चीन के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका रही है। शहबाज शरीफ दोनों देशों के संबंधों के लिए इमरान खान की सरकार से भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। इमरान खान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अमरीका ने उनकी सरकार के खिलाफ साजिश की थी और नई सरकार अमरीका की कठपुतली होगी। जापान टाइम्स ने लिखा है कि इमरान खान ने अपनी विदेश नीति में अमरीका को बिल्कुल हाशिए पर रख दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ एक बार फिर से आईएमएफ से बातचीत शुरू कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि शहबाज की पहचान एक सीनियर प्रबंधक और नेता की रही है, लेकिन वो कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे। शहबाज शरीफ के सामने भी आर्थिक चुनौतियां हैं और वो भी गठबंधन सरकार के मुखिया हैं। इमरान खान ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने साजिश के तहत उनकी सरकार को गिरा दिया। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो इसकी जांच कराएंगे और इसमें कुछ भी सच्चाई मिलती है तो इस्तीफा दे देंगे। नवाज शरीफ की ही तरह शहबाज भी बिजनेसमैन है, ऐसे में देखना होगा कि उनका बिजनेसमैन होना प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नजरिए को कैसे प्रभावित करता है। शहबाज शरीफ का राजनीतिक जीवन ज्यादातर पंजाब प्रांत में ही केंद्रित रहा है। पंजाब प्रांत पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अमीर प्रांत है। वो 3 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2018 के आम चुनाव में PMLN ने शहबाज शरीफ को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था। उस वक्त हुए आम चुनाव में तहरीके इंसाफ पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। चुनाव हारने के बाद शहबाज शरीफ को विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था।
भारत के कुछ राज्यों में चुनाव और उपचुनाव हुए हैं। सभी जगहों पर भाजपा के संबंध में चर्चा जोरों पर है। ब्यौरे के साथ दिल्ली समाज संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत में आज लोकसभा की 1 और विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट के लिए मतदान के दौरान हिंसा का समाचार है। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उन पर हमला किया और उनके काफिले पर पथराव किया। अग्निमित्रा ने कहा,
200% जीत रहे और तृणमूल कांग्रेस हर तरह का कोशिश कर रहे वायलेंस क्रिएट करने का, अशांति क्रिएट करने का। कल रात से धमकी ये सब चालू हो गया है। वोटर कार्ड छीन लिया गया है गोरंडी बाराबनी अंचल से। पूरी तरह से समझ गया है कि वो हार रहे।
तृणमूल कांग्रेस ने भी अग्निमित्रा पॉल पर पोलिंग बूथ में घुसने और अनियमितता फैलाने का आरोप लगाया है। ज्ञात रहे कि आसनसोल सीट पर बाबुल सुप्रियो भाजपा के सांसद चुने गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़ दी थी और त्याग पत्र देकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस सीट पर उपचुनाव में अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो इससे पहले कांग्रेस और उससे पहले भाजपा में शामिल थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा,
ऐतिहासिक जीत का भरपूर जो है धमाका जो होगा वो जो मदमस्त सरकार है, जो अहंकार और गरूर में डूबी हुई सरकार के कुछ लोग जिस तरह दिख रहे हैं, ये मदमस्त हाथी की चाल में जिस तरह चल रहे हैं, उन पे एक जबरदस्त अंकुश लगेगा। क्यों दुनिया की निगाहें इन दिनों आसनसोल पे लगी हुई है और आसनसोल के इस चुनाव पे लगी हुई है।
बाबुल सुप्रियो इस बार बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 2 और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की कुल 4 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। इन चुनावों के परिणाम 16 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद आज विधान परिषद के चुनाव भी संपन्न हुए, जिसमें भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल 36 सीटों में से भाजपा ने 33 सीटों पर कब्जा जमा लिया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और उसका कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया। इस चुनाव में वाराणसी सीट पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने आजमगढ़, वाराणसी और प्रतापगढ़ सीट पर कब्जा जमाया है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, अब पैगंबर इस्लाम की पत्नी हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के निधन की बरसी पर पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसके बाद आप सुनेंगे रमजान के संबंध में एक अन्य विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पहली बीवी हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की बरसी पर विशेष प्रोग्राम लेकर रविश जैदी और मरियम महरदादी आपकी सेवा में हाजिर हैं। आशा है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा।
दोस्तों, उस दिन हजरत खदीजा बहुत बीमार थीं। उनके सामने जो रास्ता था वो उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाता, लेकिन उस जीवन साथी को छोड़ना आसान नहीं था जिसके पावन वजूद के साथ बरसों बिताए हों और जिससे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से प्रेरणा मिलती हो। हज़रत खदीजा के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से अलग होने की कल्पना से ही तकलीफ होती थी। उस दिन बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वो कुछ क्षणों से ज़्यादा होश में नहीं थीं। पैगंबर इस्लाम हज़रत खदीजा के रास्ते में मौजूद कठिनाइयों को समझ रहे थे। पैगंबर इस्लाम अपना मुंह हज़रत खदीजा के कान के पास ले गए और धीरे से कहा, जल्द ही संसार की चुनी हुई महिलाओं की मेहमान होगी, उन तक मेरा सलाम पहुँचाना। ये सुनकर जैसे हज़रत खदीजा में फिर से जान आ गई। उन्होंने पलकें खोलीं और खुशी से चमकती आँखों से पैगंबर इस्लाम से पूछा, जिनका आपने ज़िक्र किया है ये लोग कौन हैं? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, हज़रत ईसा की माँ हज़रत मरियम, हज़रत मूसा की बहन हज़रत कुलसुम, फिरऔन की बीवी हज़रत आसिया। जो कुछ पैगंबर इस्लाम ने खदीजा के कान में कहा, उससे स्वर्ग में जाने के लिए हज़रत खदीजा का चेहरा खिल उठा।
पवित्र रमज़ान की 10वीं तारीख इस्लामी जगत की महान हस्ती व पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के इस नश्वर संसार से जाने का दिन है। ऐसी महान महिला जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हर सुख दुख में साथी थीं, पैगंबरी के कठिन रास्ते में उनकी मदद करती थीं। पैगंबर इस्लाम विभिन्न मामलों में हज़रत खदीजा से मशवरा करते थे, उनकी प्रबंधन की क्षमता और अक्लमंदी से लाभ उठाते थे। जैसा कि पैगंबर इस्लाम ने हज़रत खदीजा की तारीफ में कहा है, ईश्वर खदीजा पर कृपा करे, वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब दूसरे मेरा इनकार करते थे, उन्होंने उस वक्त मेरी पुष्टि की जब दूसरे रद्द करते थे, सारी संपत्ति मेरे हवाले कर दी जबकि मेरे पास सांसारिक माल कुछ भी नहीं था।
हजरत खदीजा ऐसी वफादार हस्ती थीं जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति इस्लाम को फैलाने के लिए खर्च कर दी और उसे पैगंबर इस्लाम के हवाले कर दिया। वो पैगंबर इस्लाम की तन्हाई की साथी थीं। वो हमेशा महसूस करती थीं कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुकून व गौरवपूर्ण जीवन गुजार रही हैं। इसी वजह से वो उनके उद्देश्य को पहुंचाने के लिए सारी कोशिश करती थीं। जिस वक्त ईश्वरीय संदेश लाने वाले फरिश्ते हज़रत जिब्राइल पैगंबर इस्लाम के सामने प्रकट हुए और पैगंबरी की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी, تو حضرت خدیجہ پہلی مہیلا تھیں جنہوں نے اپنے پتی کی پیغمبری پر یقین کیا اور پہلی مہیلا تھیں جنہوں نے اسلام کو سویکار کیا۔ اس بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، دنیا میں ایشور اور محمد پر ایمان لانے والوں میں خدیجہ سب سے پہلے ہیں۔
دوستو، جن دنوں اسلام نہال کی طرح تھا اسے مضبوط درخت کی طرح بنانے میں حضرت خدیجہ نے خون پسینہ ایک کر دیا۔ انہوں نے اپنی ساری دھن سمپتی اسلام کو پھیلانے میں خرچ کر دی۔ دوسری اور جب بھی مکہ کے انیکیشور وادیوں کے رویے سے پیغمبر اسلام دکھی ہوتے تھے تو حضرت خدیجہ اپنی محبت سے آپ کے دکھ کو ہلکا کرتیں اور جگمگاتے بھوش کی امید جگاتیں۔ اس طرح پیغمبر اسلام کے جیون میں رس گھولتی۔ سنی مت کے مشہور دھرم گرو ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، حضرت خدیجہ کی وشیش خوبی یہ تھی کہ آپ پیغمبر اسلام کا سمان کرتی اور پیغمبر اسلام کی پیغمبری سے پہلے اور بعد دونوں دور میں ان کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں۔
حضرت خدیجہ کی ایک اپادھی مبارکہ ہے جس کا مطلب ہے برکت و وبھوتیوں سے بھری۔ سورگیہ محدث امی نے ایک روایت کا حوالہ دیا ہے کہ ایشور نے اپنے نکٹ حضرت خدیجہ کے مہتو کے مد نظر حضرت عیسیٰ کے نام سندیش میں کہا کہ مبارکہ سورگ میں حضرت مریم کی ساتھی ہیں۔ بائبل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں میں آیا ہے، انتم ایشوریہ دودھ کی نسل مبارکہ سے چلے گی، وہ سورگ میں حضرت مریم کے ساتھ ہوں گی۔
پیغمبر اسلام کی پیغمبری سے پہلے اجانتا کے دور میں عرب میں عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، وہ بہت ہی بری حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ کچھ قبیلے تو عورت کے وجود کو اپنے لیے کلنک سمجھ کر اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے دور میں حضرت خدیجہ نے اسلام کے سمویدھان کی مدد کر یہ ثابت کیا کہ ایک عورت کو نہ صرف جینے کا حق ہے اور اسے اپنا مول ادھیکار حاصل کرنا چاہیے، بلکہ وہ اپنے بھلے کرموں سے ایسے چرن میں پہنچ سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام اسے دنیا کی چار چنی ہوئی عورتوں میں بتائیں اور ایشور جبرائیل کے ذریعے اپنا وشیش سلام اس تک پہنچائیں۔
اس بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، جس رات میں معراج پر تھا لوٹتے وقت جبرائیل میرے پاس آئے، میں نے جبرائیل سے پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے جواب دیا، آپ ایشور اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام پہنچا دیجئے۔ جب پیغمبر اسلام نے جبرائیل کا سندیش حضرت خدیجہ کو پہنچایا تو انہوں نے کہا، بے شک ایشور سلام ہے، اسی کی ہستی سے سلامتی ہے اور جبرائیل پر سلام ہو۔
حضرت خدیجہ سنسار کی چار چنی ہوئی مہیلاؤں میں ہیں جن کا پیغمبر اسلام نے ذکر کیا۔ جب حضرت خدیجہ کے یہاں سنتان کے جنم لینے کا وقت قریب آیا تو قریش کی عورتوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ ایشور نے حضرت آسیہ اور حضرت مریم جیسی سداچاری مہیلاؤں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا اور یہ بتایا کہ جو ایشور کی مدد کرتا ہے ایشور اس کا بہترین مددگار ہے۔
پیغمبر اسلام نے اپنی قیمتی زندگی کے 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ ان دونوں ہستیوں نے دشمنوں کی ناکابندی میں شیبہ ابی طالب میں 3 سال سنیکت جیون گزارے۔ ان دنوں شیبہ ابی طالب میں مسلمان بھی ناکابندی کا جیون گزار رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے شیبہ ابی طالب میں یادگار زندگی گزاری۔ جتنی مدت تک مسلمان کٹھور آرتھک ناکابندی میں تھے حضرت خدیجہ نے ان کے خرچ کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی اور کئی گنا قیمت پر مسلمانوں کے لیے ضروری چیزیں خریدتی تھیں، یہاں تک کہ انیکیشور وادیوں کی سازش ناکام ہو گئی اور مسلمان ناکابندی سے رہا ہو گئے۔
حضرت خدیجہ نے ہجرت سے 3 سال پہلے کی مسلمان ابھی بھی شیب ابی طالب میں ناکابندی میں تھے بیمار ہو گئیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی وفادار بیوی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا، ہے خدیجہ، کیا یہ جانتی ہو کہ ایشور نے سورگ میں بھی تمہیں ہی میری بیوی قرار دیا ہے؟ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کو ڈھارس بندھائی، ان سے سورگ کا وعدہ کیا اور اس کے اچ درجے کو ان کی سیوا کا بدلہ قرار دیا۔
حضرت خدیجہ کی بیماری دن بدن سخت ہوتی جا رہی تھی، جس کے مد نظر حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، ہے ایشوریہ دود، کچھ وصیتیں ہیں، اگر آپ کا حق ادا نہ کر پائی ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میں نے آپ میں کوئی کمی نہیں دیکھی، آپ نے پوری کوشش کی، میرے گھر میں آپ کو کٹھنائیوں کا سامنا ہوا اور آپ نے اپنی ساری دولت ایشور کے مارگ میں خرچ کر دی۔ حضرت خدیجہ نے کہا، ہے ایشوریہ دوت، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا دھیان رکھیے گا، کیونکہ میرے بعد وہ بن ماں کی ہی ہو جائیں گی، ایسا نہ ہو کہ قریش کی کوئی عورت انہیں ستائے، ان کے ساتھ برا رویہ اپنائیں۔
آخر اسلام کی اہم مددگاروں میں سے ایک حضرت خدیجہ 10 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کے 10ویں سال اس سنسار کو الوداع کہہ گئیں۔ پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کے شوق کو غسل دیا اور انہیں اس کپڑے کا کفن دیا جو حضرت جبریل ایشور کی اور سے حضرت خدیجہ کے لیے لائے تھے۔ پیغمبر اسلام خود قبر میں اترے اور انہوں نے ہی شو کو قبر میں رکھا۔ پیغمبر اسلام روتے ہوئے حضرت خدیجہ کے لیے دعا کرتے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا اس دنیا سے جانا پیغمبر اسلام کے لیے اتنا بڑا دکھ تھا کہ پیغمبر اسلام نے اس سال کو دکھوں کا سال کہا، کیونکہ اسی سال پیغمبر اسلام کے سب سے بڑے مددگار حضرت ابو طالب بھی اس نشور سنسار سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت خدیجہ کا نام آتا، پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ حضرت خدیجہ پر درود بھیجتے اور کہتے تھے کہ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ دوستوں، پوتر رمضان پر وشیش کارکرم ایشوری آتتھ کی ایک انکڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں رویش زیدی اور مریم مہردادی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، کارکرم شروع کرنے سے پہلے آج رمضان المبارک کے 10ویں دن کی دعا اور اس کا انواد سنتے ہیں۔
اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علی واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی بإحسانک یا غایۃ الطالبین۔
ہے میرے سوامی، آج کے دن مجھے ان لوگوں میں سملت کر جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیرے سمکش کلیان و موکش تتا تیرا سامی پراپت کرتے ہیں۔ تجھے تیرے اپکار کی سوگند، اے چاہنے والوں کی
अंतिम इच्छा।
रोजेदार दोस्तों और साथियों, आपकी नमाजें और उपासनाएं कबूल हों। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। यही वो महीना है जिसमें हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और अपनी उपस्थिति को ईश्वर के समक्ष पहले से अधिक आभास कर रहे हैं। जी हाँ, हम सब ईश्वर के समक्ष मौजूद हैं। हमारे दिल, धर्म और ईमान तथा हमारे जीवन के अर्थ एक नए ही रंग व रूप में ढल गए हैं। इस पवित्र महीने में पाया जाने वाला माहौल हर चीज़ और हर इंसान के जीवन को इस्लामी जीवन शैली की ओर मार्गदर्शित करता है।
रमज़ान जिस तरह से रोज़ा रखने वाले के मन और आत्मा को बदलता है और स्वच्छ करता है, उसी तरह से इस्लामी देशों के शहरों को भी अलग रंग में रंग देता है। दुआओं की आवाज़ें, इफ्तार की तैयारी, दावतें और शाम के वक्त बाज़ारों में ख़ास तरह की चहल पहल, ऐसी चीज़ें हैं जो रमज़ान के महीने में ज़्यादा स्पष्ट रूप से और अलग तरह से नज़र आती हैं। ईरान में भी अन इस्लामी देशों की भांति रमज़ान का विशेष रूप हर नगर में देखने को मिलता है, लेकिन मशहद और कुम जैसे पवित्र नगरों में अंदाज ज़रा अलग होता है और अलग होने के साथ ही इतना मनमोहक होता है कि हर आस्थावान का मन मोह लेता है।
इस्लामी जीवन शैली में कुछ बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आरंभ में हमें आंतरिक स्थिति के साथ ही साथ बाहरी हालत पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, समाज और लोगों को महत्व देना और अंत में सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवस्थाओं का ख्याल रखना। इस कार्यक्रम में हम कुछ अन्य विषयों पर रोशनी डालेंगे।
इस्लाम धर्म में इंसान की आस्था व ईमान तथा उसके बर्ताव के बीच बहुत ही गहरे संबंध पाए जाते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि कोई ईश्वर और प्रलय पर ईमान तो रखता हो लेकिन धार्मिक ना हो। इस तरह से अगर कोई ये दावा करे कि उसने कर्म की आंतरिक स्थिति को हासिल कर लिया है तो वो इबादत के विदित रूप से माफ है। उसका ये तर्क स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बातिनी दर्जे के सबसे उच्च स्थान पर थे और कभी भी उन्हें कर्म के विदित रूप को भी नहीं छोड़ा, बल्कि वो अनिवार्य चीज़ों को अंजाम देने और वर्जित चीज़ों को छोड़ने में दूसरे से ज़्यादा ध्यान देते थे।
पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ों की आंतरिक स्थिति पर ध्यान देकर मोमिनों को ज़ाहिरी अमल से नहीं रोकता, जैसा कि धर्म के विदित मामलों में व्यस्त रहने की वजह से उसे आंतरिक मामलों से निश्चित रहने की अनुमति नहीं देते। मूल रूप से कर्म के आंतरिक व विदित रूप एक वास्तविकता के दो रूप हैं कि इनमें से एक पर ध्यान दिए बिना दूसरे पर ध्यान रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मानो आपने उस वास्तविकता को अधूरा ही समझा और उसे पूरा समझने के लिए आपको दूसरे अंश की आवश्यकता होगी।
पवित्र कुरान में ईश्वर मुसलमानों को नेक अमल या भले कर्म करने का निमंत्रण देता है। साले अमल वो काम है जो स्वच्छ और सच्ची आस्था से पैदा हो, लेकिन जब तक वो आस्था और पाक नियत अमल के चरण में नहीं आएगी तो निश्चित रूप से उसका कर्म भले कर्मों में हिसाब नहीं होगा। अब यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि भले कर्म के लिए सच्ची और अच्छी आस्था पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म की निर्भरता समय और स्थान तथा हालात पर है।
इस्लामी जीवन शैली में दूसरा अहम बिंदु समाज और व्यक्ति पर ध्यान देना है। इस्लाम धर्म हमेशा इस बात पर बल देता है कि उपासना को एक साथ मिलकर अंजाम देना चाहिए। यहाँ तक कि जमानत में लोगों की संख्या दो ही क्यों न हो, ये व्यक्तिगत इबादत से बेहतर है। यहाँ पर इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि हज व इबादत है जिसे सामूहिक रूप से अंजाम दिया जाता है। یا نماز جماعت کے آیوجن پر اسلام دھرم میں وشیش روپ سے دھیان دیا گیا ہے۔ عبادت انجام دینے میں وشیش کرم یا ویوستھا پر دھیان دیا گیا ہے، وشیش کر جب لوگ ایک لائن میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ایک ہی لائن میں حج کو انجام دیتے ہیں، یا کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ہی درشیہ پیدا کرتا ہے۔
اسلام دھرم چاہتا ہے کہ یہی کرم ایکتا اور سہردیتا مومنوں کے اندر بھی پائے جائے۔ یہ دلی ایکتا اور ایک جٹتا اسی سمے ویوہارک ہو سکتی ہے جب دنیا کے سارے مسلمان ایک نیترتو کی چھایا میں آ جائیں اور اس کے آدیشوں کا پالن کریں اور اس کے بتائے راستے پر چلیں۔ البتہ یہاں پر یہ شرط ضروری ہے کہ مسلمان جس نیترتو اور نیتا کا انوسرن کر رہے ہیں وہ غلطیوں اور پاپوں سے دور ہو یا معصوم ہو۔ امام معصوم کے نظروں سے اوجھل ہونے کے کال میں اسلامی سماج کی رکشا اور اس کی ایکتا کے لیے ہمیں ایک پوتر اور پاک دامن دھرم گرو کا انوسرن کرنا ہوگا جو دھرم کے بارے میں پوری جانکاری بھی رکھتا ہے اور اسے دھرم کے سارے نیم اور قانون اچھی طرح پتا ہوں۔
جس ویکتی کا ہم انوسرن کر رہے ہیں اسے آوشک راجنیتک اور ساماجک جانکاریاں ہونی چاہیے۔ اتیاچاریوں اور ظالموں کے مقابلے میں ڈٹنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح کے ویکتی کا انوسرن سماج کو ہر پرکار کی سمسیاؤں سے امام معصوم کے پرکٹ ہونے تک بچا سکتا ہے۔ یہاں پر اسلام دھرم میں ویکتی اور سماج دونوں ہی اہم ہیں، اور دھارمک و سانسارک وکاس اور شرشتتا ہمیشہ سے ساتھ ہی میں ویوہارک ہوتی ہے۔ اسلام دھرم میں ساری اپاسناؤں کا ویکتیگت آیام بھی ہے اور ساموہک آیام بھی ہے۔ روزہ اور روزہ رکھنا بھی اس سے الگ نہیں ہے۔
جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ روزے کا ویکتیگت آیام آت نرماڑ اور ایشور کے ساتھ ویکتی کے سمبندھوں میں سدھار پر دھیان کیندرت کرنا ہے، لیکن روزے کی ساماجک وجہ دوسروں کی آوشکتاؤں کو سمجھنا اور ساماجک نیائے کی استھاپنا کی کوشش کرنا ہے۔ مسلمان بھوک اور پیاس پر دھیر کر کے ان لوگوں کی زندگی کے حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جو اپنی آجیویکا پورا کرنے میں سکشم نہیں ہیں۔ مسلمان اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ ایشور نے ان آوشکتاؤں کو دور کرنے کے لیے ان پر جو ذمہ داری دی ہے اس سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
رمضان کے پوتر مہینے میں مسلمان ہمیشہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور غریبوں اور نردھنوں کو اپنے دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں۔ مسلمان اس پوتر مہینے میں ایک دوسرے کی بھاگیداری سے قرضداروں کا قرض ادا کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جیل سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو وتیہ سنکٹ کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ نوجوانوں اور جوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا وہ کام ہے جو اس مہینے میں سب سے زیادہ مسلمان انجام دیتے ہیں۔ سماج کا یوا ورگ ساموہک کام کر کے تتھا سماج میں سکریہ روپ سے اپنی اپستھتی درج کر کے ایشور کی پرسنتا بھی حاصل کرتے ہیں اور سماج میں رونق بھی پیدا کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔
یہ مہینہ پاپوں کا پراشت کر ایشور کی اور پلٹنے کا مہینہ ہے۔ جس ویکتی کے اس مہینے میں پاپ چھما نہ کیے گئے تو کس مہینے میں چھما کیے جائیں گے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایشور ہر رات پوتر رمضان کو 3 بار کہتا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے میں دوں، یا کوئی پراشت کرنے والا ہے کہ میں اس کے پراشت کو قبول کروں، کیا کوئی پاپوں کی چھما مانگنے والا ہے کہ میں اسے چھما کر دوں؟
پوتر رمضان پاپوں کی شمع چاہنے اور پراشت کرنے کا مہینہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنے جیون میں غلطی کی ہے اور اسے مار کا چین کیا ہے جس میں بربادی کے سوائے کچھ اور نہیں ہے، تو پوتر رمضان کا مہینہ ان کے لیے پراشت کرنے کا بہترین مہینہ ہے، کیونکہ اس پوتر مہینے میں روزے دار کے من میں کرانتی پیدا ہوئی ہے اور اس کے لیے ویوہارک روپ سے قدم اٹھانے کا اوسر مہیا ہوا ہے۔ ستکرم سے برائیوں سے پاک ہوتا اور ایشور کے پرکوپ سے دور ہوتا ہے۔ اس طرح روزے دار پاپوں کے اندھکار سے نکل کر نیتک بھلائیوں اور پرائشت کے پرکاش میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایشور کی کرپا کا پاتر بنتا ہے۔
जो चीज मनुष्य के कल्याण का कारण बनती है वो ये समझना है कि वो ईश्वर और उसकी महानता के समक्ष एक छोटा व तुच्छ बंदा है, जिसका अपना कुछ भी नहीं है। सभी अच्छाइयां ईश्वर की ओर से हैं, और जो भी समस्याएं या बुराइयां उनमें हैं वो अपने बुरे कर्मों के कारण ग्रस्त हुआ है। इंसान को ये समझना चाहिए कि अगर वो गलत चयन के कारण बुरे रास्ते पर चलता है तो व्यवहारिक रूप से ईश्वर से लड़ता है। उसे अपने आप को ईश्वर से भय और उससे आशा के बीच की स्थिति में बाकी रखना चाहिए, यानी ऐसा सोचना चाहिए कि संभव है कि अत्यधिक उपासना के बावजूद किसी बड़ी गलती के चलते उसका अंजाम बुरा हो जाए, लेकिन उसे हर हाल में ईश्वर की दया की ओर से आशावान रहना चाहिए।
ईश्वर ने स्वयं से निराशा को बड़े पापों की श्रेणी में रखा है। मनुष्य चाहे जितना बड़ा पापी हो, उसे ईश्वर की दया की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर की दया इतनी व्यापक है कि अगर मनुष्य सच्चे मन से तौबा व प्रायश्चित करके उसकी ओर लौट आए तो ईश्वर उसे क्षमा कर देगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परपौत्र इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कोई भी ईमान वाला बंदा ऐसा नहीं है जिसके हृदय में दो प्रकाश न हो, एक ईश्वर से भय का प्रकाश और दूसरे उसे आशा का प्रकाश, और अगर इन दोनों को तोला जाए तो इनमें से किसी को भी दूसरे पर श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे थे। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989030506549। दोस्तों, सबसे आज के हमारे खबरों का जो सारांश था वो इस प्रकार था कि अफगानिस्तान में ईरानी दूतावास और कौंसुलेट पर शरारती तत्वों ने पत्थर फेंका। अफगानिस्तान फिलिस्तीनी जियालों की शहादत प्रेमी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वहीं मोदी और बाइडेन के बीच वर्चुअल बैठक हुई जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा छाया रहा। साथ ही जर्मनी में महंगाई ने 41 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। बताया जाता है कि इसमें यूक्रेन और युद्ध रूस का युद्ध जो है उसकी अहम भूमिका है। तो उम्मीद आशा करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.
ہوں۔